This is an ABP Life podcast.
पता है दोस्तों, किसी भी बदलाव के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? कहानियां। कहानियां जानना, कहानियां कैमरे में कैद करना, कलम से लिखना या फिर किसी डॉक्यूमेंट पर लैपटॉप से टाइप करना, कहानियां बताना, कहानियां सुनाना, ये सभी कहीं भी बदलाव लाने का सबसे अहम हिस्सा होता है। और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्हीं कहानियों का बखान करते करते, देश दुनिया से कहानियां सुनाते सुनाते, असल लोगों की, असल जिंदगी की, साइंस की, फिक्शन की, दुनिया भर की, हम सब ने साथ में FII के 250 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं। जी हाँ, 250, वो भी 2 साल के अंदर अंदर। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए। अब हम बात करते हैं स्पेशल सीरीज की। दोस्तों, हर महीने एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर हम एक स्पेशल सीरीज करते हैं, जिसमें होते हैं चंद एपिसोड्स, मगर थीम होती है एक। हर महीने की तरह इस महीने भी हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो एक महीना चलेगी। आप सबको शायद पता होगा कि जून को दुनिया भर में प्राइड मंथ के तौर पर मनाया जाता रहा है, तो नीकी और पूछ हम क्यों पीछे रहे। हर साल की तरह इस साल भी हम आपके पास लाए हैं क्वियर मी अप, एक ऐसी सीरीज जहां हम बात करेंगे क्वियर मुद्दों की, क्वियर कहानियों की। अब इससे कई सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये कि क्वियर का मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या आता है क्या नहीं, और दूसरा सवाल ये कि जून को प्राइड मंथ क्यों मनाया जाता रहा है। इन सभी सवालों के जवाब आज देंगे, मगर आज हम एक खास गेस्ट से भी मिलेंगे, जिन्होंने दुनिया भर में अपने कपड़ों से, अपने डिजाइन से हलचल मचा कर रख दी है। ये मशहूर रियलिटी शो लॉकअप में भी कंटेस्टेंट रही हैं और वहां पर भी इनके काफी चर्चे रहे। हम बात कर रहे हैं साइशा शिंदे की। जी हाँ, साइशा ट्रांसवुमन है और अपकमिंग डिजाइनर्स की फेहरिस्त में एक जाना माना नाम भी। तो सब्र करें और उनसे भी मुलाकात होगी, मगर इससे पहले थोड़े से बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ साहिबा खान और आप सुन रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर FYI। आज हम अपनी जून की क्वेयर मी अप सीरीज का पहला एपिसोड ला रहे हैं, मगर उससे पहले आपको कुछ डाउट्स जो हैं वो हम क्लियर कर देते हैं। तो जी, पहला सवाल है क्वेयर क्या होता है। जवाब, क्वियर एक अम्ब्रेला टर्म है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, एसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल समुदाय के लिए। और अगर आप ये पॉडकास्ट सुनते आ रहे हैं तो आपको इन शब्दों का मतलब भी पता होगा। क्यों? क्योंकि हम पूरे साल भर LGBTQAI+ कम्युनिटी के ऊपर कोई ना कोई एपिसोड बनाते रहते हैं। तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे लिसनर्स को ये आइडिया होगा कि इन शब्दों का मतलब क्या है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो जी, हर इंसान के अंदर ना 4 चीजें होती हैं जिन्हें एक दूसरे से सालों से कंफ्यूज किया जाता रहा है। वो 4 चीजें कुछ यूं हैं। पहला, सेक्स यानी कि बॉडी एनाटॉमी यानी कि शारीरिक रचना। दूसरा, एक्सप्रेशन यानी कि आप खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे दूसरे तक ये बात पहुंचाते हैं कि आप कौन हैं। तीसरा, आइडेंटिटी यानी कि आप खुद को क्या मानते हैं, खुद को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और चौथा, सेक्सुअल ओरिएंटेशन यानी कि आप किस जेंडर की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। अब ये सभी टर्म्स अलग अलग हैं और कोई भी इनमें से इक्वल टू वन अनदर नहीं है। इसका मतलब कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब एक्सप्रेशन नहीं, आइडेंटिटी का मतलब सेक्स या बॉडी एनाटॉमी नहीं। सेक्स यानी कि बॉडी एनाटॉमी, एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सभी अलग अलग शब्द हैं जिनका अलग अलग मतलब है और ये सब हमारा ही हिस्सा है। आई होप कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो जी, हम क्वियर जिंदगियों और कहानियों को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उन्हें कभी सेलिब्रेट नहीं किया गया, और जब हम ये करते हैं तो उसे कहते हैं प्राइड, और इसीलिए जून का महीना होता है इंटरनेशनल प्राइड मंथ। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी हम FII पर लाए हैं खास प्राइड सीरीज। सवाल ये है कि जून ही प्राइड का महीना क्यों कहलाता है? मगर जवाब ये है कि 1969 में अमेरिका में स्टोन वॉल दंगे हुए। इन दंगों ने समलैंगिक लोगों के लिए दुनिया भर में चीजें बदल कर रख दी। ये वो समय था जब अमेरिका में समलैंगिक होना एक जुर्म था, एक बीमारी माना जाता था। अमेरिका में इस मानसिकता के चलते आए दिन पुलिस गे बार्स में छापेमारी करती, समलैंगिक लोगों को ब्लैकमेल किया जाता, उन्हीं की पुलिस द्वारा उन्हें मारा पीटा भी जाता, धमकियां दी जाती और समाज से बहिष्कार था। सो अलग ब्रिटेन में भी समलैंगिक होना 1967 तक जुर्म ही था। तुझे 1969 में सब्र का बांध टूटा और लोगों ने सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन शुरू किए। स्टोन वॉल राइट्स ने चिंगारी के रूप में काम किया और ये प्रदर्शन लुढ़कते हुए बर्फ के गोले की तरह बड़े बन गए। दंगों और प्रदर्शनों के करीब एक महीने बाद अमेरिका में समलैंगिक परेड निकाली गई। फिर ब्रिटेन में भी ऐसा ही रहा, जहां पर एक समलैंगिक परेड निकाली गई जहां पर 2000 लोग आए, और धीरे धीरे एक के बाद एक सिविल सोसाइटीज और एनजीओज और नामी ग्रामी लोगों के साथ के बाद ऐसे कानून बनने शुरू हुए जिसमें समलैंगिकता को जुर्म की श्रेणी से हटाया जाने लगा। फिर और कानून आए और आज दिन ये है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग इस महीने को प्राइड मंथ के तौर पर मनाते हैं। तो जी, ये था प्राइड मंथ का इतिहास। अब चलते हैं हमारे पॉडकास्ट की थीम पर। दरअसल हर साल हम एक थीम रखते हैं, जैसे कि पिछले साल की थीम थी क्वियर समुदाय और उन्हीं के सर्कल में उनकी स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। क्योंकि भले ही सभी एक अम्ब्रेला टर्म के नीचे आते हों, मगर एक ग्रुप में सियासत तो होगी ही। कौन किसे लीड करेगा, कौन नेता बनेगा, उस पर भी बहस होगी। तो पिछली सीरीज में हमने क्वियर सर्कल्स में उन्हीं की स्वीकृति पर बात की। इस बार हमारा फोकस है ट्रांस समुदाय के लोग और उनकी चोजन फैमिलीज। चोजन फैमिलीज नहीं समझे? तो चूंकि कई लोग, और कई लोगों से मेरा मतलब है ज्यादातर कई परिवार और खून के रिश्तेदार, इन शब्दों को नहीं समझते हैं। वो आज भी समलैंगिक होने को या फिर क्वियर समुदाय का होने को एक जुर्म और बीमारी मानते हैं। इसलिए समुदाय के लोग परिवार के बाहर अपना परिवार खोजने लगते हैं। वो परिवार जो ना सिर्फ उन्हें समझे और स्वीकार करे, बल्कि उनकी तकलीफों को भी समझे। ज्यादातर चोजन फैमिलीज में दूसरे क्वियर लोग ही शामिल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि चैलेंजेस तो सिर्फ वही समझ सकते हैं। अगर आप क्वियर नहीं हैं, तो आप भले ही क्वियर एलाय हो सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं, मगर आप उनकी तकलीफों को, उनके सुख दुख को नहीं समझ सकते, उनके चैलेंजेस को आप आर्टिकुलेट नहीं कर सकते, आप उनकी बात उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। इसी मुद्दे पर इस सीरीज में हम आपके पास लाएंगे कहानियां उन लोगों की जिन्होंने अपना प्यार परिवार बाहर ढूंढा हो। साथ ही हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ चोजन फैमिलीज की और किस तरह ट्रांस समुदाय के लोग आज हर उस फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं जो किसी ने आज से 20 साल पहले सोचा भी नहीं होगा। डॉक्टर से लेकर लॉयर तक और फैशन डिजाइनर से लेकर इंजीनियर तक, सभी क्षेत्रों में ट्रांस समुदाय के लोग अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसी ही एक ट्रांस महिला से मैं आपको मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने टीवी की दुनिया में और फैशन डिजाइनिंग में हाल ही में बहुत नाम कमाया। इन्होंने कह लें कि इतिहास गढ़ दिया भाई। हरना संधु को तो हम सभी जानते हैं। जी हाँ, 2021 की मिस यूनिवर्स जो भारतीय हैं। एक तो उन्होंने इतिहास रचा क्योंकि ये भारतीय थी, और इन्हीं के साथ साइशा शिंदे ने भी इतिहास रचा क्योंकि उन्हीं ने हरनास का गाउन डिजाइन किया था। इसके बाद साइशा ने लॉकअप नाम के रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया और उसमें भी वो अपनी बेबाक अंदाज और ईमानदारी से सबके दिलों पर छा गईं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि साइशा की चोजन फैमिली कौन है, चोजन फैमिलीज क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं, और वो कैसे बनी स्वप्निल से साइशा। हेलो साइशा, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट FII। सबसे पहले तो हमें बताएं कि कौन है साइशा।
सबसे पहले तो साइशा एक इंसान है आप ही की तरह, उसमें और आप में कुछ फर्क नहीं है। फर्क अगर देखना है तो सिर्फ इतना है कि भगवान ने उसे एक अलग शरीर में बनाया था और उसने खुद ने ये डिसाइड किया और चूज किया कि आईने में जो वो बॉडी देख रही है वो बॉडी चेंज करनी है। बस इतना सा फर्क है, बाकी तो मैं आप ही की तरह हूँ।
साइशा, आपने एक बहुत बड़ा ही अचीवमेंट है कि आपने जो इस बार की जो मिस यूनिवर्स बनी है हरना संधू, उनकी जो विनिंग ड्रेस है वो आपने डिजाइन की है, उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। आपने और भी पहले सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है, लेकिन इस बार जब एक मिस यूनिवर्स बनी और उनके बदन पर आपकी बनाई हुई ड्रेस थी, कैसा लगा?
मुझे याद है हमने वॉच पार्टी रखी थी मिस यूनिवर्स देखने के लिए, तो मैं और मेरे तीन गर्लफ्रेंड्स, हम चारों ने 5:30 बजे था मिस यूनिवर्स, तो हम लोग जाग के देख रहे थे क्योंकि हरनाज जब फिटिंग्स पे आई थी तो मुझे पता था कि ये जीत सकती है, क्योंकि इसमें कुछ एक स्पेशल बात है जो मैंने इतने सालों में बाकी कंटेस्टेंट्स में नहीं देखी थी जिनके साथ मैंने काम किया था। ऑनेस्टी, सादगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शी वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल। जिस तरीके से वो मेरे साथ तो ऑफ कोर्स गिवन था कि रिस्पेक्टफुली बात करेगी, बट वो मेरे टीम के साथ, मेरे असिस्टेंट्स के साथ हर चीज में थैंक यू बोलना, हर चीज में रिस्पेक्टफुली जवाब देना, बहुत कम लड़कियां ऐसी होती है जिनमें इतनी ऑनेस्टी और इतनी इतनी काइंडनेस रहती है। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि इसके गाउन पे तो भाई दबा के मेहनत लेनी है। शो के जो होस्ट थे उन्होंने कहा कि इंडिया तो जीतेगी, उसका गाउन देखो कैसा है। तो दैट इन इटसेल्फ वाज लाइक सच अ मोमेंट फॉर मी। एंड देन व्हेन शी वन, वी वर लाइक साइशा, वी हैव क्रिएटेड हिस्ट्री टुगेदर, हर नाज एंड मी। सो इट वाज अ वेरी स्पेशल।
यू डेफिनेटली डिड, बोथ ऑफ यू डेफिनेटली डिड, आई वुड
से। थैंक यू।
साइशा, आप एक डिजाइनर हैं इतनी बड़ी, आप किस तरीके से काम करती हैं? क्योंकि जैसे एक होता है आप क्लाइंट्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं,
ये चीज मैंने एज स्वप्निल कभी सोची नहीं थी। मैं एज साइशा ये सोचने लगी कि जो डिस्कम्फर्ट वाली चीजें होती है, जैसे फॉर इंस्टेंस पहले बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे बोलते थे मुझे स्लीव्स चाहिए, और मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कभी, लेकिन अब जब मैं साइशा बनी हूँ तो मुझे ये स्लीव्स का इम्पोर्टेंस समझा है, नेक डीप का इम्पोर्टेंस समझा है, बैक डीप का इम्पोर्टेंस समझा है। तो सबसे पहले तो मैं क्लाइंट से उनके कम्फर्ट और डिस्कम्फर्ट जानती हूँ, और उसके हिसाब से हम कलर स्टोरी डिसाइड करते हैं, एम्ब्रॉयडरी पैलेट डिसाइड करते हैं, सॉरी एम्ब्रॉयडरी स्टोरी डिसाइड करते हैं। और इट्स अ गिव एंड टेक इन दैट एस्पेक्ट, कि आप बताओ आपको क्या पसंद है, मैं बताऊँ मुझे क्या लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो वो गिव एंड टेक होता है हर टाइम। और इवेंचुअली ऑफ कोर्स जब आउटफिट रेडी होता है तो दो फिटिंग्स होते हैं एंड डिलीवरी। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऐसे बोलने के लिए,
exactly.
लेकिन वो काफी इट गेट्स अ बिट
टैक्सिंग होता है, yeah.
बैक एंड फोर्थ में बहुत टैक्सिंग हो जाता है।
सबसे ज्यादा इरिटेटिंग क्लाइंट का कोई स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहें हमसे, नाम मत बताइए, लेकिन कभी आपको लगा कि अबे यार क्या है?
आई थिंक मुझे सबसे इरिटेटिंग से ज्यादा अनोइंग भी वो क्लाइंट्स लगते हैं जो खुद को डिजाइनर समझते हैं। अगर आप एक डिजाइनर के पास आए हो तो उनमें उतना फेथ और कॉन्फिडेंस दिखाओ कि वो आपके लिए कुछ बना पाए। कम ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, इवन सेलिब्रिटीज में बहुत कम ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं, लेकिन होते हैं, उनकी आइडियाज जो है वो इतने ओवरपावर करने लग जाते हैं कि आउटफिट जो डिसाइड किया था वैसे दिखता ही नहीं है।
साइशा, अब आते हैं जो हमारे इस सीरीज का मेन फोकस है, यानी कि द चोजन फैमिली।
सिसजेंडर लोग जो होते हैं, स्ट्रेट पीपल जो स्ट्रेट लोग जो होते हैं, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बातें शेयर करते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं करते। तो वैसे ही हमारी कुछ चीजें हैं जो ऑब्वियसली हम पेरेंट्स के साथ स्टार्टिंग में एटलीस्ट शेयर कर नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, और उस टाइम में हमारे फ्रेंड्स हमारे फैमिली बन जाते हैं। तो वैसे ही हमारी जो चोजन फैमिली होती है उनसे हम ज्यादा क्लोज इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनको एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम क्या फेस कर रहे हैं। वो हमारे वेदर इट इज आर फिजिकल प्रॉब्लम्स, वेदर इट इज द सोसाइटल प्रॉब्लम्स, वो और कोई नहीं समझेगा। वो सिर्फ वही समझेंगे जो हु आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम। पेरेंट्स का क्या होता है ना, दे हैव बीन कंडीशनड For decades now, you know, Indian parents are conditioned that लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, तो उनको ये बात जहन में आना ही बहुत difficult हो जाता है। And kids who are planning to transition are 16, 15, 18, तब उन्हें realization हो जाती है। तो उस समय वो खुद को संभाले कि अपने parents को समझाए, क्योंकि उनको खुद को संभालना ही इतना डिफिकल्ट होता है। यू आर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर ब्रेन सो मच दैट देयर इज नो स्पेस फॉर यू टू मेक योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। तो ऐसे समय में यू गो टू पीपल हु यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग, हु यू जस्ट हैव टू टेल व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, एंड दैट्स व्हाई दे एम्ब्रेस यू फास्टर एंड इजीली। तो That's why the importance of chosen family, कि आपको कुछ समझाना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ बताना रहता है, लेकिन फैमिली को पहले सब समझाना पड़ता है समझाने के बाद अगर वो एक्सेप्ट करे ना करे तो वो सारा फिर टर्मोइल झेलना पड़ता है. उसके बाद देयर इज एक्सेप्टेंस देन देयर बी अंडरस्टैंडिंग. बट विद द चोजन फैमिली none of that earlier steps are there, none of those earlier steps are there. It is just about expressing and them hugging you and taking you forward. And as you said, for me, I have a chosen family, but meri khud ki family ne hi itna acha support diya hai. Aur ek cheez maine transition kafi late choose kiya karne. I started my
transition. That was my next question. आपने काफी लेट ये सोचा, चूज किया ट्रांजिशन करने का, तो वो एक यूरेका मोमेंट शायद आप कहीं रहा होगा कि अब मुझे ही करना है, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं, थोड़ी सी अगर जर्नी के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं.
खैर वो झिझक जो रहती है ना, वो एक कश्मकश जो रहती है, वो तो पहले से थी कि क्या मैं एक तो 90s में ट्रांस ये शब्द भी नहीं था. तभी क्या होता था, या तो शीमेल होता था, या तो लेडी बॉय होता था, या तो those other terms that are used in our society, which is a kinner, which is a hijra, all of that was there, right? तो am I that or am I gay? ये बहुत सारे सवाल आते थे कि अगर मैं gay हूं तो मैं ऐसे क्यों फील करती हूँ कि मैं अंदर से लड़की हूँ, और अगर मैं अगर अंदर से लड़की हूँ तो क्या मैं एक किन्नर हूँ, मैं क्या हूँ? ये बहुत सारे सवाल रहते थे. और इतना स्टिग्मा एसोसिएटेड है इन शब्दों से कि क्या मैं किन्नर हूं, ये लोग बोलने से भी डर जाते हैं बिकॉज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. तो मैंने एक समय में ये डिसाइड ही कर लिया था कि मैं डेफिनेटली किन्नर नहीं हूं, पर मैं गे हूं. तो आई डिसाइडेड टू लिव विद दैट आइडिया. और ये एक रियलिटी है जिससे आप भाग नहीं पाते. तो कई सालों तक ऑब्वियसली मेरे बॉयफ्रेंड्स भी रहे हैं, आई वॉज अ गे मैन, मैंने गे रिलेशनशिप्स रखे हैं, और पब्लिकली ऑल्सो आई वॉज अ गे मैन, इंडस्ट्री में सबको पता था, फैमिली में सबको पता था. बट फिर वो मोड आ जाता है जब यू कांट रन अवे फ्रॉम इट. एंड मुझे मैं डिप्रेशन होने लग गया था, पैनिक अटैक्स बहुत हो गए थे, क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसके लिए मैंने थेरेपी स्टार्ट की थी. और थेरेपी में वंस एंड फॉर ऑल वो एक्सेप्टेंस हो गई कि आई एम अ ट्रांस वुमन. और तब तक क्या हुआ था, थोड़ी सोशल मीडिया के वजह से नॉलेज भी बढ़ गई थी, इंफॉर्मेशन भी बहुत आ रही थी.
अच्छा, आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन, सॉरी टू इंटरव्यू, आई हैव अ क्वेश्चन. व्हेन यू टॉकिंग अबाउट थेरेपी, जब आप थेरेपी की बात कर रही हैं, तो आई एम श्योर कि हर थेरेपिस्ट ये नहीं समझते हैं कि आप कहाँ से किस डगर से आप गुजर रहे हैं. तो क्या आपके सामने भी ऐसे कई बार लोग आए जो जजमेंटल थे, जिन्होंने शायद आपको कुछ और बोला हो कि नहीं आप सही हो, ये तो फेज है, ये तो ये है, ऐसा कुछ कभी हुआ है थेरेपी के दौरान?
यू नो, मैंने जब सबसे पहले जो थेरेपिस्ट से मैं मिली थी, और अगेन यहाँ पे मेरी प्रिविलेज की बात करना जरूरी है, क्योंकि मैं एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से हूँ. मैं प्रिविलेज बैकग्राउंड, आई मीन मैंने मेहनत करके करियर बनाया और खुद से प्रिविलेज बनाई है. मैंने द टॉप मोस्ट साइकाइट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ली थी. ही इज वन ऑफ द लीडिंग साइकाइट्रिस्ट इन मुंबई. और उन्होंने मुझे कहा था कि अरे आप तो इतने हैंडसम हो, आप तो इतने वेल बिल्ट हो, आप इतने मैस्कुलिन हो, तो आपको क्यों लगता है आप तो पक्का नहीं हो ट्रांस, आप गे ही हो या आपका फेज है. और मैंने ये मान लिया क्योंकि अभी एक्सपर्ट की बात सुन के और क्या करेंगे. पर ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि यू कांट रन अवे फ्रॉम इट, वो मुझे खाता रहा अंदर. और 3-4 साइकाइट्रिस्ट से मिली मैं, जब फाइनली मैं मेरे लास्ट जो साइकाइट्रिस्ट से मिली, जो अभी मेरे साइकाइट्रिस्ट है, अभी भी है, उन्होंने बताया कि आपको डेफिनेटली GID है, जिसको हम जेंडर आइडेंटिटी डिस्फोरिया कहते हैं. और मेरे दिमाग में, जब ऑब्वियसली ये तो बात की बात है, ये बहुत बार मेरे दिमाग में बातें आती थी कि जब मैं प्रिविलेज्ड होकर अगर मुझे इतने टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट इतनी गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो छोटे छोटे गाँवों में और इवन इन दिस सिटी वेयर पीपल हु कांट अफोर्ड द बेस्ट साइकाइट्रिस्ट, उनको कितनी गलत इन्फॉर्मेशन देती जाती हो, दे रहे होंगे लोग, और उसके चलते उनके पेरेंट्स को कितनी गलत इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, और पेरेंट्स को भी फिर यही लगने लग जाता है कि ये तो फेज ही है बेटा, ये और कुछ नहीं है, तुम चुपचाप शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, सब ठीक हो जाएगा. तो विच इज वाई आई टॉक अबाउट द फैक्ट दैट साइकाइट्रिस्ट कैन ऑल्सो बी रॉन्ग समटाइम्स. आपको मल्टीपल साइकाइट्रिस्ट के साथ मिलके जब आपके मन में आपको खुशी मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, तब आपको पता हो, दैट इज व्हेन यू नो दैट यस, दिस साइकाइट्रिस्ट इज गिविंग मी द राइट राइट इंफॉर्मेशन, द राइट
डायरेक्शन, दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी.
थेरेपी तो चालू थी तब रियलाइज, मतलब ये तो पता चल गया कि आई हैव दिस, आई हैव जेंडर आइडेंटिटी डिस्फोरिया. फिर आया प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस का, कि अब तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. कैसे तैसे वो एक्सेप्ट किया. एक्सेप्टेंस के बाद ये था कि क्या अब मैं ट्रांजिशन करने वाली हूँ, क्या मुझे चेंज करना है, या फिर पूरी जिंदगी एक डबल लाइफ जीनी है, एक झूठ जीना है, क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी. जिस लेवल की मैं डिजाइनर हूँ, जितने साल मैंने काम किया है, क्या मेरे काम को अफेक्ट करेगा, मेरे ऑफिस में कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे कि नहीं आएंगे. वो करते करते हाँ ना में फाइनली कोविड आ गया. और कोविड में हम सब चार दीवारों में, मेरे जितने फियर्स थे सब आंखों के सामने, कहीं भागने की ऑप्शन ही नहीं थी. तो मेरे पैनिक अटैक्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे तब. और एक डी रियलाइजेशन करके एक प्रॉब्लम है, वो भी मुझे हुई थी. और तब मेरे साइकाइट्रिस्ट ने कहा कि वी हैव टू सॉर्ट दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ये तुम्हारा उसी के वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही हो और तुम उसके बारे में कुछ कर नहीं रही हो. तो एक सेशन हुआ था ड्यूरिंग कोविड, जिसमें मेरा एक ऐसे जैसे बटन जैसे स्विच ऑफ स्विच ऑन हो गया था. और सडनली एक दिन वो सेशन के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे करना है, मैं रेडी हूं. और बस उसके बाद और आज का दिन, ट्रांजिशन इज चेंज माई लाइफ एंड it's something that I can't even imagine my life without.
तो आप जब बात कर रही हैं थी, खुशी से बात कर रही हैं transition के बारे में, आपको इतनी खुशी है, आप एक 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 बदली हुई औरत हैं पूरी. क्या change आया है स्वप्निल से साइशा के बीच में?
You know, जब ऐसे situations अब आते हैं as a woman कि अरे स्वप्निल को तो ये problems नहीं थे, तो क्या is it better that I would have been स्वप्निल? वो सोच ही मुझे डराता है कि मुझे वो तो कभी नहीं करना है मुझे. आई मीन दैट इज समथिंग आई नेवर वांट टू डू. तो उसके चलते यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे ऐसे लगता है कि शायद अभी बेटर है या तभी कब. अभी जो है वो एनी डे, एवरीथिंग दैट आई डू टुडे इज बेटर. इट्स लाइक इफ आई एम गेटिंग टू लिव द ड्रीम, आई विल बी अ फूल टू गो बैक टू रियलिटी. सो आई
डोंट, दिस इज योर रियलिटी, देयर इज नो अदर रियलिटी, दिस इज योर रियलिटी.
यस, दिस इज माय रियलिटी.
यस. और जो एक फैशन इंडस्ट्री है, हम जानते हैं आप क्लाइंट्स के साथ काम करती हैं जो इतने बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं, तो एक तरीके से आप एक ग्लैमर इंडस्ट्री का भी हिस्सा है. उसमें कितनी जगह है इस समय ट्रांस कम्युनिटी की? हम देख रहे हैं कि बहुत बेहतरीन बड़ी बड़ी फिल्में बनाई जा रही हैं, लोग हैं, तो बड़े बड़े स्टार्स हैं, पर आपको एज अ ट्रांस वूमन कैसा लगता है जब आप भी उस इंडस्ट्री का हिस्सा है?
मुझे लगता है कि जितनी भी प्रोफेशंस इस देश में हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंक्लूसिविटी एंड इन्वॉल्वमेंट हमारे प्रोफेशन में ही है. ये सवाल पूछने चाहिए कॉर्पोरेट ऑफिसेस में, ये जवाब पूछने चाहिए कोर्ट में, पॉलिटिक्स में. क्यों ऐसा है कि पॉलिटिक्स में आज भी कोई स्ट्रॉन्ग LGBTQI कम्युनिटी में से नहीं है? क्यों ऐसे है कि आज भी गवर्नमेंट ऑफिसेस में विजिबिलिटी नहीं है, कोटा नहीं है? LGBTQI में जितने लोग हैं, सबको इस इंडस्ट्री में नहीं आना है ना, सबको सर्वाइव करना है, अपनी जिंदगी बनानी है. तो आई फील हमारी इंडस्ट्री में फिर भी बहुत हो रहा है ना. एज फार एज रिप्रेजेंटेशन इन मूवीज इज कंसर्न, दैट इज ऑन स्क्रीन इज कंसर्न, दैट इज द वन प्लेस वेर आई फील वी आर डेफिनेटली लैकिंग. बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो डरते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी मूवी देखने कौन आएगा, क्या पिक्चर पैसे बनाएंगे, जिसके चलते आई फील बिकॉज ऑफ OTT वो चेंज हो रहा है. और मेन स्ट्रीम मूवीज में वो चेंज लाना डिफिकल्ट है, पर करना जरूरी है. तो देखते हैं जैसे साल आगे जाते हैं क्या कितना फर्क आता है.
रोल था जो एक ट्रांस पर्सन अच्छे से रोल प्ले कर सकते थे या कर सकती थी, लेकिन उसमें भी एक सिसजेंडर महिला को लिया गया, तो उसमें मतलब आप बना तो रहे हैं फिल्में, लेकिन आप किन के लिए बना रहे हैं फिल्में, उस पर थोड़ी सी अगर आप बात करें।
आपने बहुत सही जवाब दिया, सॉरी सर, उस आपके सवाल में ही जवाब था कि आप किसके लिए बना रहे हो। तो वो जो मूवी है वो सिसजेंडर लोगों के लिए ही बनाई गई है, इसीलिए उसमें सिसजेंडर हीरोइन को ही लिया गया है। तो मतलब आपको हमारी कहानी चाहिए दुनिया को बताने के लिए, लेकिन हमारे लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि आपको आपके लोगों को बताना है। तो उधर ही आपने एक डिवाइड कर दिया है, हमारे लोग और आपके लोग। सो यू योरसेल्फ हैव डिवाइडेड फर्स्टली। नाउ हैविंग सेड दैट, आई फील क्योंकि पहली बार ऐसी मूवी बनाई जा रही थी, तो उनकी सोच धारा थोड़ी वैसी थी कि हम ऑडियंस को थिएटर तक लाना चाहते थे। अभी क्या बोलूं मैं, इट्स एन एक्सक्यूज, बट जिस तरीके से आप आजकल देखते हैं, कोई भी अगर एक हीरोइन लॉन्च होती है, कोई एक एक्ट्रेस नई लॉन्च होती है, तो उसके पीछे जिस तरीके की मार्केटिंग होती है, जिस तरीके से उसे प्रेजेंट किया जाता है, उस तरीके से अगर एक ट्रांस महिला को प्रेजेंट किया होता, तो आई फील इंडिया एज अ कंट्री इज वे मोर एक्सेप्टिंग देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। जैसे इंग्लिश में बोलते, यू नीड टू डू इट। सो आई फील पीपल स्पेशली मेन इन दिस कंट्री डोंट हैव द, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते। तो जब उनकी बंद हो जाए तो शायद आप बड़े स्क्रीन पे एक ट्रांस वुमन को देख पाओ, क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी, आप फॉर एग्जांपल पृथ्वीराज देख लो, जिस तरीके से मनुष्य को प्रेजेंट किया है, फिर आप बंटी और बबली देखो, जिस तरीके से शर्वरी को प्रेजेंट किया है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सारे मूवीज देख लो, जिस तरीके से तारा सुतारिया को, जिस तरीके से आलिया भट्ट को प्रेजेंट किया है, वो प्रॉपर एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी करके है। यस, तो अगर आप चाहो तो आप एक ट्रांस वुमन को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके इंट्रोड्यूस कर सकते हो, पर क्या आप करना चाहते हो? एज आई सेड, डू यू हैव द बॉल्स टू डू दैट? दे डोंट हैव द बॉल्स टू डू दैट, इज द सिंपल आंसर।
राइट, उसी से एक और छोटा सा ये सवाल है कि ये तो हो गया कि भाई आपने, आप क्वियर इश्यूज पर बात कर रहे हैं इसलिए आपको चाहिए, लेकिन क्या जरूरी है कि हर क्वियर इशू के लिए ही आप ट्रांस कम्युनिटी का दरवाजा खटखटाए? या फिर
नो, दैट इज अनदर थिंग, लाइक जस्ट बिकॉज द मूवी हैज अ ट्रांस कैरेक्टर यू वांट द ट्रांस पर्सन? नो, व्हाट अबाउट हैविंग अ मूवी वेयर यू हैव अ फ्रेंड हु इज अ ट्रांस हु इज जस्ट देयर एज अ कैरेक्टर? What about having a lawyer who's a trans, but she's there?
What about having a main protagonist who's a trans person?
Main protagonist, and not, it's got nothing to do with the fact that she's a trans woman. Barabar. Aur ye abroad to ho raha hai, India mein abhi tak nahi hua.
Matlab hum dekh rahe hain Hunter Schafer ko Euphoria mein, humne dekha kitna prominent role hai, kitna prominent.
Yeah. Lavon Cox ko le lo, abhi she's a cop in one movie. She's a teacher in another movie. Yeah. She's a sports instructor in another movie. And the fact that she's a trans woman doesn't even come on screen once. और वही आना जरूरी है, और वो कब होगा? जब पहले आप basic trans movies तो बनाओ जिसमें हम बस हो नहीं रहे। So the one thing is they want to portray us only if that we are crying or we are getting murdered or we are murdering someone. You know what I'm trying to say? Like Gangubai में भी जिस तरीके से उन्होंने वो character लिया था, उनको भी negative character में ही लिया है। आप आज के जमाने में भी यही दिखा रहे हो। That trans characters are either scary, you are either supposed to be scared of them or laugh at them, or they are a caricature to show the world ke see we've taken a trans character.
Tokenism, yes.
Tokenism, right? So,
do you have those aspirations to be a part of the silver screen?
I very much have those aspirations, simply because I want to prove that point, that if you work hard, you can achieve these things. It's not impossible. एंड मुझे स्पेशली इस तरीके के काम करने हैं जहाँ पे मुझे इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि मैं ट्रांस हूँ, मुझे इसलिए लिया गया है क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ, क्योंकि मुझ में वो गुण है। और मैं चाहती हूँ कि जितने शोज हैं, जितने भी रियलिटी शोज में, मैं लॉकअप की भी मैं वही बात कर रही थी कि इस साल आपने चलो एक ट्रांस वुमन को लिया है, नेक्स्ट ईयर आप 6 लो। They need to be visible for the human beings that they are, not for the gender identity that they have. So, jab ye hoga, tab I'll really feel happy. Tab tak main to full force mehnat lene wali hu ki main visible rahu har cheez mein.
जी सायशा, थोड़ा बस खत्म करते हैं इंटरव्यू एक रैपिड फायर के साथ आपके साथ, ठीक है? रैपिड फायर करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। सायशा फेवरेट फिल्म?
वाओ, ये जवानी है दीवानी।
फेवरेट एक्टर?
In India, I would say Ranbir Kapoor. Mm-hmm. Internationally, I would say Jake Gyllenhaal.
Okay. Favorite actress?
Wow, this is even tougher. India, I would say I like Radhika Apte a lot. I like Kareena Kapoor a lot. Deepika, of course, a lot. Internationally, I have always admired Jennifer Connelly, Emma Stone.
ये अच्छा, आपका favorite गाना? इस समय कौन सा गाना है जो loop पर चल रहा है?
अरे अभी इस समय मेरे phone पे दुनिया loop पे चल रहा है from Luka Chupi.
Okay, okay, okay. Favorite OTT show जो अभी you are going crazy about?
Currently, I'm watching The Lincoln Lawyer.
Are you interested in law?
I am interested in law because I like giving justice to people and all that. Studying law is impossible. It's impossible. It's too dirty.
Yeah. So, Sasha's favorite place?
For me, it is always going to be Mumbai.
Favorite person right now? Could be anybody.
Favorite person?
Yes. Right now. Could be anybody.
Favorite person?
Yeah.
Oh, wow.
Can't take
favorite
time.
Person right now is, I don't know, God. God.
God
is by my side. Favorite wow. person is God.
Playing so safe, Sasha. Come on, you don't play safe. We all know it.
Okay, favorite person right now. Okay, I would say it's not a person, but right now my cat is my favorite person.
Again,
right?
Okay. Really. Chalo, safe. Yeah, bol diya. Chalo, safe hai.
मुझे संजय लीला भंसाली के साथ काम करना है तो मैं उसके लिए मर गया।
को एक साथ लिफ्ट में अनिल कपूर, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन मिल जाए तो आप किसको लिफ्ट से धक्का देंगी अगर लिफ्ट खराब हो गई?
मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं ऋतिक के साथ तो हमेशा से मैं किसी को फेंकूंगी नहीं पहले तो I have loved each one of them.
लिफ्ट ओवर वेट हो रही है फिर भी लिफ्ट ओवर वेट हो रही है फिर भी नहीं
मैं कूद जाऊंगी बाहर।
How sacrifice?
मैं कूद जाऊंगी बाहर।
अच्छा जी, ये हो गया हमारा रैपिड फायर राउंड। बहुत ही सेफ खेला आपने, मैं आपको हैम्पर बिल्कुल नहीं देती अगर मैं करण जौहर होती।
फाइनल वन जो खेलो जाके आपको जैसे जवाब चाहिए।
So, thank you so much, Sasha. बहुत मजा आया आपके साथ बात करके आज मुझे।
Yes, I had a very good time.
Me too, me too.
Take care.
Bye. Bye. Bye.
तो दोस्तों ये थी सायशा और आज हमने जाना कि एक सेलिब्रिटी होने के अलावा सायशा कौन है, क्या है उनकी पसंद, कैसे करती हैं काम और आखिर क्यों है चोजन फैमिली क्वीर समुदाय के लिए जरूरी। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आया हो तो हमें ट्वीट कर बताएं एबीपी लाइव पॉडकास्ट के ट्विटर पन्ने पर। फिलहाल मैं चलती हूँ, आपसे अगले FII में मुलाकात होगी विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक। मुझे दे इजाजत, मैं हूँ साहिबा खान। पॉडकास्ट की साउंड डिजाइनिंग की है ललित ने और आप सुन रहे थे एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश FII माने दो फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार।
फॉरवर्डेड मैसेजेस नहीं, क्रेडिबल न्यूज शेयर करो। डाउनलोड करो एबीपी लाइव ऐप और जानते रहो।
This is an ABP Life podcast.